डैनियल की पुस्तक संख्या 29, बेलशस्सर का भोज और भविष्यवाणी की घड़ी, रविवार का कानून, बाबुल का पतन और अंतिम संकट को उजागर करना।
बेलशस्सर का भोज रविवार के कानून की घड़ी की पहचान करता है, परंतु वो जोर रिपब्लिकन सिंह के न्याय पर देता है। डैनियल के तीसरे अध्याय में नबुकदनेस्सर की सोने की प्रतिमा वही इतिहास परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है, जिन्हें तब ध्वज के समान ऊंचा उठाया जाता है। डैनियल का छठा अध्याय का भी उसी रेखा को प्रस्तुत करता है, किंतु वही प्रोटेस्टेंट सिंह की भूमिका पर प्रकाश डालता है। बेलशस्सर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसने अपने सरदारों में से 1000 को बुलाया।
बेलशस्सर राजा ने अपने 1000 सरदारों के लिए एक बड़ा भोज किया और उनके सामने दाख मदिरा पी। जब वो दाख मदिरा का स्वाद ले रहा था, तब उसने आज्ञा दी कि वे सोने और चांदी के वे पात्र ले आएं जिन्हें उसके पिता नबुकदनेस्सर यरूशलेम में जो मंदिर था वहां से निकाल लाया था, ताकि राजा, उसके प्रधान, उसकी पत्नियां और उसकी उपपत्नियां उनमें पिएं। तब सोने के वे पात्र ले आए जो यरूशलेम में परमेश्वर के घर के मंदिर से निकाले गए थे, और राजा, उसके प्रधान, उसकी पत्नियां और उसकी उपपत्नियां उन्हीं में पीने लगे। वे दाख मदिरा पीते और सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति करते थे। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की उंगलियां प्रकट हुई और राजमहल की दीवार के पलस्तर पर दीपदान के सामने लिखने लगी, और राजा ने उस हाथ का वो भाग देखा जो लिख रहा था। डैनियल 5:1-5।
10 संख्या अजगर का प्रतिनिधित्व करती है और 100 तथा 1000 उसी प्रतीक का मात्र विस्तार है। छठे अध्याय में 120 कपटपूर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और 120 पुरोहितों का प्रतीक है। रेखा पर रेखा को ध्यान में रखते हुए बेलशस्सर का भोज एक भ्रष्ट शासन कला पर न्याय और एक भ्रष्ट चर्च व्यवस्था पर न्याय को दर्शाता है। बेलशस्सर बाबुल की मदिरा से मतवाला था और फिर उसने यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर के पवित्र पात्रों को अपवित्र करने का निश्चय किया।
भविष्यद्वक्ता कहते हैं, मैंने एक और स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके पास महान सामर्थ्य था, और उसकी महिमा से पृथ्वी प्रकाशित हो गई, और उसने प्रबल स्वर में पुकार कर कहा, बाबुल महान गिर पड़ी है, और दुष्टात्माओं का निवास बन गई है। प्रकाशित वाक्य 18:1-2। ये वही संदेश है जो दूसरे स्वर्गदूत ने दिया था, बाबुल गिर पड़ी है, क्योंकि उसने अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु सब जातियों को पिला दी। प्रकाशित वाक्य 14:8। वो दाख मधु क्या है? उसकी झूठी शिक्षाएं। उसने चौथी आज्ञा के सप्त के स्थान पर संसार को एक झूठा सप्त दे दिया है और उस असत्य को फिर से दोहराया है जो शैतान ने एदन में पहली बार हव्वा से कहा था, आत्मा का स्वाभाविक अमरत्व। ऐसी अनेक संबंधित भूले उसने दूर दूर तक फैलाई हैं, उपदेश के रूप में मनुष्यों की आज्ञाएं सिखाते हुए। मत्ती 15:9। चयनित संदेश, पुस्तक 2:1.
बेलशस्सर जो दाख मधु पी रहा था, वो पापाई सत्ता का मूर्ति पूजक सप्त था, क्योंकि वो भोज रविवार के कानून के भविष्य सूचक घंटा का प्रतिनिधित्व करता था। पवित्र स्थान के जो पात्र वो भोजशाला में ले आया, वे केवल परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का ही प्रतीक नहीं थे, पवित्र पात्र परमेश्वर की प्रजा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि शाब्दिक वस्तु आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करती है और लोग पात्र हैं।
तथापि परमेश्वर की नींव अटल बनी हुई है और उस पर ये मुहर है, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके हैं, और जो कोई मसीह का नाम लेता है वो अधर्म से अलग हो जाए। परंतु एक बड़े घर में केवल सोने और चांदी के पात्र ही नहीं होते, वरन लकड़ी और मिट्टी के भी, और कुछ आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। इसलिए यदि कोई मनुष्य अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का पात्र ठहरेगा, पवित्र किया हुआ, स्वामी के उपयोग के योग्य और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार। 2 तीमुथियुस 2:19-89।
बलपूर्वक लागू की गई रविवार की उपासना के माध्यम से परमेश्वर की प्रजा को अपवित्र किए जाने के दौरान जलती हुई लिखावट बेलशज्जर के विनाश की घोषणा करती है।
उसी समय मनुष्य के हाथ की उंगलियां प्रकट हुईं और उन्होंने राजा के महल की दीवार के पलस्तर पर दीपदान के सामने लिख दिया और राजा ने उस हाथ का वो भाग देखा जो लिख रहा था। तब राजा का मुख बदल गया और उसके विचार उसे व्याकुल करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और उसके घुटने आपस में टकराने लगे। राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर ज्योतिषियों, कसदियों और भविष्य बताने वालों को बुलाने को कहा और राजा ने बाबेल के बुद्धिमानों से कहा, जो कोई इस लिखावट को पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, उसे किरमिजी वस्त्र पहनाया जाएगा, उसके गले में सोने की जंजीर डाली जाएगी और वो राज्य में तीसरा शासक होगा। दानियेल 5:5-3:3।
ऐतिहासिक रूप से इस खंड को इस अर्थ में समझा गया है कि बेलशज्जर के पिता ने राजनीतिक सिंहासन बेलशज्जर को सौंप दिया था और इसी कारण लिखावट की व्याख्या के बदले बेलशज्जर जो सर्वोच्च पद दे सकता था वो तीसरे शासक का पद था। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून की ओर बढ़ते हुए राजनीतिक नेतृत्व धार्मिक नेतृत्व के अधीनस्थ स्थिति में होगा, जो उपासना के एक नए रूप को प्रस्तुत करने के लिए काम कर रहा होगा। पशु की प्रतिमा चर्च और राज्य के संयोग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें संबंध पर नियंत्रण चर्च का होता है और रविवार के कानून के समय बेलशज्जर राजनीतिक राजा था। इस प्रकार राज्य का प्रतीक पर वो अपने पिता के धार्मिक अधिकार के अधीन केवल दूसरे स्थान पर था। वो दानियेल को जो सर्वोत्तम दे सकता था वो तीसरे शासक का पद था।
जब प्रारंभिक कलीसिया सुसमाचार की सरलता से भटककर और मूर्ति पूजक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को स्वीकार कर भ्रष्ट हो गई तो उसने परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य खो दी और लोगों के विवेक पर नियंत्रण रखने के लिए उसने धर्मनिरपेक्ष सत्ता के समर्थन की मांग की। परिणाम पोपतंत्र था, एक ऐसी कलीसिया जिसने राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखा और उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से विधर्म के दंड के लिए प्रयोग किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को पशु की प्रतिमा बनाने के लिए धार्मिक शक्ति को नागर पर इस प्रकार नियंत्रण करना होगा कि राज्य का अधिकार भी कलीसिया द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए। प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं द्वारा रविवार पालन का प्रवर्तन पापसी अर्थात पशु की उपासना का प्रवर्तन है। जो लोग चौथी आज्ञा के दावों को समझते हुए सच्चे विश्राम दिन के स्थान पर जूठे का पालन करना चुनते हैं, वे इस प्रकार उसी शक्ति को सम्मान अर्पित करते हैं जिसने ही उसका आदेश दिया है। परंतु किसी धार्मिक कर्तव्य को लौकिक शक्ति से लागू करने के उसी कार्य में कलीसियाएं स्वयं पशु के लिए एक प्रतिमा बनाएंगी। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार पालन का प्रवर्तन पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना का प्रवर्तन होगा। महान विवाद 44:44-448-449।
संकट में ही चरित्र प्रकट होता है और दीवार पर लिखे रहस्यमय संदेश ने बेलशज्जर के अनुभव में एक संकट पैदा किया और उसके राज्य के अंत को चिह्नित किया। इस प्रकार पृथ्वी के पशु के राज्य के अंत का प्रतीक बना। उसी रात बेलशज्जर मर गया, जो रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जब रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य अमेरिका बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के रूप में अपदस्थ कर दिया जाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तुरंत ही उन 10 राजाओं का प्रधान राजा बन जाता है। 10 राजा बाइबल की भविष्यवाणी का 7वां राज्य है और वे तुरंत सहमत हो जाते हैं कि अपने इस 7वें राज्य को पशु को सौंप दें,
क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय में ये डाल दिया है कि वे उसकी इच्छा पूरी करें और एक मत हों और अपना राज्य उस पशु को दे दे। जब तक कि परमेश्वर के वचन पूरे न हो जाए। प्रकाशित वाक्य 17:17।
अंतिम गतिविधियां बहुत तीव्र होती है और छठे राज्य से 7वें और फिर 8वें में संक्रमण तेज होता है, क्योंकि तब संसार एक बड़े संकट में होता है। पृथ्वी के पशु के पतन से बेलशस्सर भयभीत होता है और 10 राजाओं का अग्रणी राजा होने के नाते वो उस भय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पतन पर पृथ्वी के सभी राजा अनुभव करेंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 में दीवार पर लिखावट प्रकट होने की घड़ी वही घड़ी है जो महान भूकंप की है। उसी समय इस्लाम के 3 प्रतीक चिह्नित किए जाते हैं और अंतिम दिनों में राजाओं को भयभीत करने का कारण इस्लाम ही होता है।
क्योंकि देखो, राजा इकट्ठे हुए, वे साथ साथ निकल गए, उन्होंने उसे देखा और आश्चर्यचकित हो गए। वे घबरा गए और जल्दी से भाग निकले। वहां भय ने उन्हें जकड़ लिया और पीड़ा जैसे प्रसव वेदना में पड़ी स्त्री की। तू पूर्वी पवन से तरशी के जहाजों को तोड़ देता है, जैसा हमने सुना है वैसा ही हमने सेनाओं के प्रभु के नगर में, हमारे परमेश्वर के नगर में देखा। परमेश्वर उसे सदा के लिए स्थिर करेगा। सेला। भजन संहिता 48:3-4-3 तक।
सरदार या राजा बेल्शजर के भोज में एकत्र थे। वे बाबुल की मदिरा पी रहे थे और परमेश्वर के पवित्र स्थान के पवित्र पात्रों को संभालते और निहारते थे। तभी भय ने उन्हें जकड़ लिया, जैसा कि दीवार पर लिखावट प्रकट होने पर बेल्शजर के भय से व्यक्त होता है। बेल्शजर का भय एक बढ़ती हुई दहशत का आरंभ था, जिसका मद प्रसव पीड़ा में पड़ी एक स्त्री से किया गया है और प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय की घड़ी 12वें अध्याय में ले जाती है, जहां चिन्ह एक प्रसव के निकट स्त्री के रूप में चित्रित है। पहली प्रसव पीड़ा भोज सभागार की दीवार पर लिखावट है। ये भय इस्लाम की पूरब की हवा से उत्पन्न होता है, जो तरशीश के जहाजों को तोड़ देती है। बेल्शजर की भोज सभा में 1000 सरदार बाबुल की दाख मधु का सेवन कर रहे हैं, जो रविवार के प्रवर्तन का प्रतीक है। उसी समय नबूकदनेस्सर का वाद्य वृंद संगीत बजाने लगता है, जबकि बेल्शजर पवित्र स्थान के आभूषण मंगवा लेता है। सूर की वेश्या गाना शुरू करती है और धर्मत्यागी इज़राइल नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति के चारों ओर नाचने लगता है। परंतु ये जलसा पूर्वी पवन द्वारा तहस नहस कर दिया जाता है, जो शीघ्र आने वाली तीसरी हाय है और वही सातवीं तुरही है। जब इस्लाम ये जलसा तहस नहस करता है तो राष्ट्र क्रोधित हो जाते हैं। वे क्रोधित होते हैं क्योंकि तरशीश के जहाज, जो पृथ्वी के आर्थिक ढांचे का प्रतीक है, तब समुद्र के बीचों बीच डुबो दिए जाते हैं।
तरशीश तेरी हर प्रकार की बहुत सी धन संपत्ति के कारण तेरा व्यापारी था। वे चांदी, लोहा, रांगा और सीसा लेकर तेरे मेलों में व्यापार करते थे। यावान, तूबाल और मैशिक तेरे व्यापारी थे। वे तेरे बाजार में मनुष्यों और पीतल के पात्रों का व्यापार करते थे। तोगर्मा के घराने के लोग तेरे मेलों में घोड़ों, घुड़सवारों और खच्चरों का व्यापार करते थे। देदान के लोग तेरे व्यापारी थे। अनेक द्वीप तेरे हाथ के व्यापार में थे। वे तेरे लिए उपहार में हाथी दांत के सींग और आबनूस लाते थे। सीरिया तेरी बनी हुई वस्तुओं की बहुतायत के कारण तेरा व्यापारी था। वे तेरे मेलों में मरकत, बैंगनी वस्त्र और काढ़े हुए काम तथा उत्तम मलमल और मूंगा और सुलेमानी पत्थर के साथ लेन देन करते थे। यहूदा और इसराइल का देश तेरे व्यापारी थे। वे तेरे बाजार में मिन्नत का गेहूं और पन्नग और मधु और तेल और बलसान का व्यापार करते थे। दमिश्क तेरी बनी हुई वस्तुओं की बहुतायत और सब प्रकार के धन की बहुतायत के कारण तेरा व्यापारी था। हेलबोन की दाखरस और सफ़ेद ऊन में दान और यावान भी आना जाना करते हुए तेरे मेलों में कारोबार करते थे। चमकदार लोहा, कासिया और कलमुस तेरे बाजार में थे। देदान तेरे रथों के लिए बहुमूल्य कपड़ों का व्यापारी था। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे साथ मेमनों, मेढ़ों और बकरों में लेन देन करते थे। इन्हीं में वे तेरे व्यापारी थे। शेबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी थे। वे तेरे मेलों में सबसे उत्तम मसालों और सब अनमोल पत्थरों और सोने के साथ लेन देन करते थे। हारान, कन्नेह और एदेन और शेबा, अशूर और चिलमत के व्यापारी तेरे व्यापारी थे। ये सब प्रकार की वस्तुओं में, नीले कपड़ों और काढ़े हुए काम में और रस्सियों से बंधे देवदार से बने कीमती वस्त्रों के ऊपर व्यापार करते थे। तेरे माल सामान में तेरे बाजार में थे। तरशीश के जहाज तेरे बाजार में तेरा गीत गाते थे और तू समुद्रों के बीच भरपूर हुआ और बहुत महिमाएं बना। तेरे मल्लाहों ने तुझे बड़ी जलराशि में पहुँचा दिया। पूर्वी पवन ने समुद्रों के बीच तुझे तोड़ डाला। तेरी धन संपत्ति और तेरे मेले, तेरा माल, तेरे नाविक और तेरे कर्णधार, तेरे जोड़ने वाले कारीगर और तेरे माल पर व्यापार करने वाले और तेरे सब वीर पुरुष जो तेरे भीतर हैं और तेरी सारी संगति जो तेरे मध्य हैं, तेरे विनाश के दिन समुद्रों के बीच गिर पड़ेंगे। यहेज़केल 27:12-26।
तरशीश के जहाज पृथ्वी ग्रह की आर्थिक संरचना के प्रतीक है और उन्हें पूर्वी पवन द्वारा समुद्र के बीचों बीच डुबो दिया जाता है। यहेजकेल हमें बताता है कि ये तेरे विनाश के दिन में होता है। और यहेजकेल के अध्याय 27 का विषय टायरस पर विलाप है।
प्रभु का वचन फिर मेरे पास आया ये कहते हुए, अब हे मनुष्य पुत्र, सोर के लिए विलाप उठा और सोर से कह, हे तू जो समुद्र के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो बहुत से द्वीपों के लोगों का व्यापारी है, प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा है मैं पूर्ण सुंदरता का हूं। यहेजकेल 27:1-3।
टायरस के विनाश का दिन विलाप का विषय है। टायरस के विनाश का दिन रविवार का कानून है, क्योंकि टायरस पापाई सत्ता का प्रतीक है, जिसका न्याय उसी घड़ी में आरंभ होता है जब प्रकाशित वाक्य 18 की दूसरी आवाज लोगों को बाबुल से बाहर निकलने के लिए बुलाना शुरू करती है।
और मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी जो कहती थी, मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से कोई भी तुम पर न आए, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्मता को स्मरण किया है। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया वैसा ही उसका प्रतिदान करो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना लौटाओ। जिस प्याले को उसने भरा है उसी में उसके लिए दो गुना भर दो। जितना उसने अपना महिमा मंडन किया और विलासिता में जीती रही उतना ही उसे यातना और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी होकर बैठी हूं, मैं विधवा नहीं और मुझे कोई शोक न देखना पड़ेगा। इस कारण एक ही दिन में उस पर उसकी विपत्तियां आएंगी, मृत्यु, विलाप और अकाल, और वो पूरी तरह आग से जला दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय करने वाला प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और विलासिता से जीवन बिताया, जब वे उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे। उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय वो महान नगर बाबुल, वो शक्तिशाली नगर, क्योंकि एक ही घड़ी में तेरा न्याय आ पहुंचा। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनके माल को खरीदता नहीं। प्रकाशित वाक्य 18:9-11।
दानियल की पुस्तक में घड़ी के रूप में 5 बार प्रयुक्त वो शब्द सदैव किसी न किसी प्रकार के न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। जिस खंड में वो प्रयुक्त होता है उसका संदर्भ ही न्याय के प्रकार को निर्धारित करता है। दानियल अध्याय 4 में घड़ी शब्द का पहली बार उपयोग न्याय के आने की घोषणा करने के लिए किया गया है। चाहे वो 22 अक्टूबर 1844 को आरंभ हुआ अन्वेषण न्याय हो या रविवार के कानून पर आरंभ होने वाला कार्यकारी न्याय, दोनों ही स्थितियों में अन्वेषण और कार्यकारी न्याय क्रमिक होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून पर पोपतंत्र का कार्यकारी न्याय आरंभ होता है, वही उस घड़ी को चिह्नित करता है जब पोपतंत्र का कार्यकारी न्याय आरंभ होता है, और वही घड़ी प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के महान भूकंप की घड़ी है, जब दो साक्षी जिनका प्रतिनिधित्व शद्रक मेशक और अबेदनगो करते हैं भट्टी में डाल दिए जाते हैं, एक ऐसे ध्वज के रूप में जो यहेजकेल की पराक्रमी सेना की भांति ऊंचा उठाया जाता है। वही घड़ी है जब बेलशज्जर की दीवार पर लिखावट प्रकट होती है, तर्शीश के जहाज जो पृथ्वी ग्रह के आर्थिक आपूर्ति मार्गों की संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं उस समय समुद्रों के मध्य डूब जाते हैं, और इससे पृथ्वी के व्यापारी और राजा, जैसा कि बेलशज्जर द्वारा दर्शाया गया है, भयभीत हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में घड़ी वो समय है जब इस्लाम की तीसरी विपत्ति शीघ्र आती है, 7वीं तुरही बजती है और राष्ट्र क्रोधित हो जाते हैं। ये तीनों प्रतीक इस ओर संकेत करते हैं कि इस्लाम वही ईश्वरीय साधन है जिसका उपयोग प्रभु उसी घड़ी में बेलशज्जर के वध को अंजाम देने के लिए करते हैं। बेलशज्जर का वध उन शत्रुओं ने किया जो गुप्त रूप से उसके राज्य में उन फाटकों से घुस आए जिन्हें लापरवाही से खुला छोड़ दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा दीवार को महान भूकंप की घड़ी निकट आने पर लापरवाही से खुला छोड़ दिया गया है। दानियल की पुस्तक के अध्याय 11 के अंतिम 6 पदों में पापसी के मरणांतक घाव के चंगे होने का वर्णन है। उन पदों में 3 बाधाओं की पहचान की गई है जिन पर पापसी का मरणांतक घाव चंगे होने के साथ साथ विजय पाई जाती है। उत्तर का राजा सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचने के मार्ग में सदैव तीन बाधाओं पर विजय पाता है और हमेशा इसी क्रम में, पहले अपने शत्रु पर, दूसरे अपने सहयोगी पर और अंत में अपने शिकार पर। सबसे पहले जो पराजित हुआ वो दक्षिण का राजा था, जो सोवियत संघ रोम का अंतिम शत्रु का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 1989 में बहा दिया गया। दूसरी बाधा मनोरम देश है, जो रोम का वो सहयोगी है जिसने रोम के लिए सोवियत संघ को पराजित किया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे उस घड़ी में पराजित किया जाता है जिसका हम अभी विचार कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी बाधा मिस्र के रूप में प्रस्तुत उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जब पापसी अपने शिकार संयुक्त राष्ट्र पर नियंत्रण कर लेती है। 1985 में जब उन पदों की मुहर खुली और उसके बाद उन पदों के ज्ञान में वृद्धि हुई, तब ये समझा गया कि मूर्ति पूजक रोम, पोप शासित रोम और फिर आधुनिक रोम, जिसे दानियल के 11वें अध्याय के अंतिम 6 पदों में उत्तरी राजा के रूप में दर्शाया गया है, इन प्रत्येक को एक राज्य के रूप में स्थापित होने से पहले तीन भौगोलिक बाधाओं को पार करना आवश्यक था। मूर्ति पूजक रोम के लिए उन तीन बाधाओं को तीन दिशाओं के रूप में दर्शाया गया था
और उनमें से एक छोटा सा सींग निकला जो दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और शोभायमान देश की ओर अत्यंत बड़ा होता गया। दानियल 8:9।
पापाई रोम के लिए वे तीन सींग थे जिन्हें उखाड़ फेंका जाना था।
मैं उन सींगों पर विचार कर रहा था और देखो, उनके बीच से एक और छोटा सींग निकला जिसके सामने प्रथम सींगों में से तीन जड़ सहित उखाड़ दिए गए। और देखो, उस सींग में मनुष्य की आंखों के समान आंखें थी और एक मुंह जो बड़ी बड़ी बातें करता था। दानियल 7:12।
आधुनिक रोम, उत्तर का राजा, जिसका उल्लेख दानियल अध्याय 11 के अंतिम 6 पदों में है, के सामने तीन बाधाएं थीं, दक्षिण का राजा, गौरवशाली भूमि और मिस्र। जैसे मूर्ति पूजक रोम और पोपतंत्रीय रोम के साथ था, वैसे ही ये तीन बाधाएं भौगोलिक अवरोधों का प्रतिनिधित्व करती थीं। आधुनिक रोम, जिसे दानियल अध्याय 11 के अंतिम 6 पदों में उत्तर के राजा के रूप में दर्शाया गया है, को तीन दीवारों को पार करना था और पहली दीवार के साथ एक दार्शनिक दीवार भी थी, जिसे उसी समय हटाया गया जब एक वास्तविक दीवार हटाई गई। 1989 में जब उत्तर के राजा ने सोवियत संघ, दक्षिण का राजा को गिरा दिया, तो लौह पर्दा की दार्शनिक दीवार हटा दी गई, जैसे ही बर्लिन दीवार को ध्वस्त किया गया। बेलशज्जर के न्याय की घड़ी में जब दीवार पर लिखावट स्पष्ट है और उसके शत्रु बिना पहरे वाले फाटकों से चुपके से अंदर घुस रहे हैं, तब चर्च और राज्य के पृथककरण की दार्शनिक दीवार हटा दी जाती है, जबकि तीसरी हाय से संबद्ध इस्लाम महिमामय देश की दक्षिणी सीमा पर निगरानी रहित दीवार से चुपचाप भीतर प्रवेश कर चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला मिस्र विजित कर लिया जाएगा और जब हर राष्ट्र को टायर की वेश्या द्वारा निर्देशित एक विश्व सरकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तब राष्ट्रीय संप्रभुता की दार्शनिक दीवार हटा दी जाएगी। उस समय एक वित्तीय पतन होगा जो अंतिम दिनों के मार्शल लॉ और निरंकुशता को जन्म देगा। बहुत संभव है कि वॉल स्ट्रीट कहलाने वाली एक सड़क पर कुछ घटित हो।
वे ही साधन जिन्हें अब परमेश्वर के कार्य में बहुत कंजूसी से लगाया जाता है और जिन्हें स्वार्थपूर्वक रोके रखा जाता है, थोड़े ही समय में सब मूर्तियों के साथ छछूंदर और चमगादड़ों के हवाले फेंक दिए जाएंगे, जब शाश्वत दृश्यों की वास्तविकता मनुष्य की इंद्रियों के सामने प्रकट हो जाएगी। तब धन का मूल्य बहुत शीघ्र और अचानक घट जाएगा। वेलफेयर मिनिस्ट्री 266।
हम अगले लेख में बेलशस्सर पर अपने अध्ययन को जारी रखेंगे।
आज जैसे एलिया के दिनों में था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों और झूठे देवताओं के उपासकों के बीच विभाजन की रेखा स्पष्ट रूप से खींची गई है। तुम कब तक दो मनों के बीच डगमगाते रहोगे? एलिया ने पुकारा, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो चलो, पर यदि बाल तो उसके पीछे हो चलो। 1 राजा 18:21। और आज के लिए संदेश यह है, बाबुल महान गिर पड़ी है। हे मेरे लोगों, उससे निकल आओ ताकि तुम उसके पापों के भागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से कुछ भी तुम्हें न मिले, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्माओं को स्मरण किया है। प्रकाशित वाक्य 18:2-4:5। वह समय दूर नहीं जब हर आत्मा पर परीक्षा आएगी। झूठे सप्त का पालन हम पर जोर देकर लागू कराया जाएगा। संघर्ष परमेश्वर की आज्ञाओं और मनुष्यों की आज्ञाओं के बीच होगा। जिन्होंने कदम दर कदम दुनियावी मांगों के आगे झुकते हुए दुनियावी रीति रिवाजों को अपनाया है, वे तब उपहास, अपमान, कारावास की धमकी और मृत्यु का सामना करने के बजाय सत्ताधारियों के सामने झुक जाएंगे। उस समय सोना मैल से अलग कर दिया जाएगा। सच्ची धर्मपरायणता उसके केवल बाहरी रूप और चमक तमक से स्पष्टतः अलग पहचानी जाएगी। अनेक तारे जिन्हें हमने उनकी चमक के लिए सराहा है तब अंधकार में बुझ जाएंगे। जिन्होंने पवित्र स्थान के आभूषण धारण किए हैं पर जो मसीह की धार्मिकता से वस्त्र धारित नहीं हैं, वे तब अपनी ही नग्नता की लज्जा में प्रकट होंगे। भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं 1878।